ओम शांति। जैसा कि सच्चान भाई जी ने बताया कि आज का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, मैं ऐसा कहूं, क्योंकि आप 3 दिन से यहाँ पर जो कोर्स अटेंड कर रहे हैं, जरूर कुछ आपके जहन में क्वेश्चंस होंगे और एक प्रयास रहेगा इस सेशन के दौरान, इस पैनल डिस्कशन के दौरान, कि आपके जहन का हर क्वेश्चन उसका एक बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल उदाहरण सहित आपको आंसर यहां से दिया जाए। तो मैं आज के, जैसा कि भाई साहब ने बताया, आज हमारे बीच 4 विशेष मेहमान होंगे जो आपके उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो मैं आज के पहले मेहमान, जो कि आर्मी से हैं, आप कर्नल हैं आर्मी में और इस सिक्योरिटी विंग के विशेष आप एक पिलर कहें तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो आप सिक्योरिटी विंग से जब से ये बना 2001 तब से आप जुड़े हैं, तो आपका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन इस प्रकार है। आपने 1989 में आर्मी में पोजीशन प्राप्त किया, आप विशेष 9 गरवार में रहे और अपनी सेवाएं वहां पर दी और विशेष इस फौज में रहकर आपने कश्मीर, नागालैंड और मणिपुर में अपनी कमान संभाली। 2001 से 2003 के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ, आप विशेष उसमें शामिल रहे 17,000 फीट पर और प्रेजेंटली वर्तमान में आप पिथौरागढ़ में पोस्टेड हैं और विशेष आप 33 ईयर्स से हमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में से जुड़े रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जोरदार कलकल ध्वनि से मैं कर्नल सती भाई जी को स्टेज पर आमंत्रित करती हूं कि इतना आर्मी में अपना इतना सब सेवाएं देते हुए भी आपने स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड को नहीं छोड़ा। एक बार फिर से जोरदार तालियां। कर्नल सती भाई, आज के सेशन में हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं विशेष एयरफोर्स से SSP राव भाई जी, आप भी जरूर स्टेज पर आएं, आपका भी हम वेलकम और अभिनंदन करते हैं। भाई साहब का इंट्रोडक्शन इस प्रकार है। भाई साहब विशेष, जैसा कि भाई साहब ने बताया, हमारे सचान भाई ने, आप फाइटर पायलट रहे हैं, जोरदार तालियां। और सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी 20,200 आवर्स MiG-30 ये आप फ्लाई करने का आपका विशेष रिकॉर्ड रहा है। आप 2012 में विशेष आध्यात्मिक ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और लगभग 10 वर्षों से अपनी विशेष समय और सेवाएं इस संस्था को आपने डेडिकेटेड की और अभी हाल ही में 2 वर्ष पहले ही आपका रिटायरमेंट हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आप एक बहुत ही अच्छे पैरा जंपर भी रहे, जोरदार तालियां। तो भाई साहब आपका भी विशेष अभिनंदन और स्वागत। रिटायरमेंट के बाद आप शांतिवन, जो आप ये सुंदर परिसर देख रहे हैं, मनमोहिनी वन है, इसके साथ ही शांतिवन परिसर है, आप यहीं पूरी रूप से समर्पित रहकर अपनी सेवाएं देते हैं। आज के हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो दिल्ली पुलिस से हैं, तो मैं संजीव भाई जी को विशेष स्टेज पर बुलाना चाहूंगी और आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इंस्पेक्टर संजीव भाई जी दिल्ली पुलिस से हैं, आप राजयोगा फैकल्टी भी हैं, आपने आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ कॉमर्स, आप पिछले 25 वर्ष से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। हमारा दिल्ली के निकट ही एक बहुत ही सुंदर रिट्रीट सेंटर है ORC, वहां भी आप रेगुलर अपनी सेवाएं देते रहते हैं और लगभग 100 जो वर्कशॉप्स हैं या फिर हम कहेंगे सेशंस हैं, आपने विशेष सभी फील्ड्स में फॉर्मेशंस में जाकर अपनी सेवाएं दी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो विषय है वो है हैप्पीनेस पर, और आपका ये सेशन हो चुका है तो जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन और स्वागत। और इस पैनल डिस्कशन में हमारे जो चौथे मेहमान हैं वो हैं BK जगबीर भाई जी, आपका भी विशेष स्टेज पर अभिनंदन और स्वागत। तालियों में बहुत कमी नजर आ रही है। आपका भी मैं ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आप जैसा कि सिक्योरिटी विंग जिसके तहत ये पिछले 3 दिन से प्रोग्राम सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसे ही हमारा एक स्पोर्ट्स विंग भी है, उसके आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपने एयरफोर्स में 5 वर्षों से अधिक अपनी सेवाएं दी। आप ओरिजिनली फरीदाबाद हरियाणा से हैं और डेडिकेटेडली आप हेडक्वार्टर माउंट आबू से अपनी सेवाएं लगभग 20 वर्षों से अधिक से आप दे रहे हैं। और विशेष जो आपकी उपलब्धि रही है, आपको 2016 के रियो ओलंपिक्स में ब्राजील में भेजा गया एज ए माइंड पावर कोच। जोरदार तालियां, भाई साहब एक बहुत ही अच्छे माइंड पावर कोच रहे हैं, तो आज के इस सुंदर मंच के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि शायद इस कोर्स से रिलेटेड, शायद मेडिटेशन से रिलेटेड, शायद अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जहन में होंगे। वैसे तो हमारे सभी फैकल्टीज ने जो भी आपके सत्र अभी तक हुए हैं सभी में उन क्वेश्चंस को, उन आंसर्स को शामिल करने की जरूर कोशिश की, लेकिन आज आप जो हमारे आदरणीय मेहमान आपको स्टेज पर नजर आ रहे हैं, आज वो अपने प्रैक्टिकल अनुभव को आपके सामने जरूर रखेंगे। तो आज का जैसा पैनल डिस्कशन का टॉपिक ही है प्रैक्टिकल मेडिटेशन इन लाइफ, तो मैं अब क्वेश्चंस शुरू करना चाहूंगी। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं अपने आदरणीय SSP राव जी जो कि एयरफोर्स से हैं उनसे पूछना चाहूंगी कि भाई साहब, जैसे कहते भी हैं कि जो मेडिटेशन है तो क्या वाकई में मेडिटेशन हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है, या कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके लिए विशेष हमें मेडिकेशन की जरूरत होती है, तो क्या मेडिकेशन के साथ साथ मेडिटेशन भी अगर हम करें तो उसमें ज्यादा बेनिफिट देखने में आ सकता है, या फिर कोई भी हेल्थ इश्यू है उसको हम मेडिटेशन से कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो आपका कोई लाइफ का कोई ऐसा अनुभव रहा हो विशेष तो आप हमें जरूर बताएं।
ओम शांति। जैसा हम आज के सेशन में भी सुन चुके हैं कि मेडिटेशन का मीनिंग ही है हीलिंग, कहीं ना कहीं इसके साथ हीलिंग जुड़ा है, उसको यूज करने की जरूरत है। तो इस विषय में मैं 2 ऐसे वाक्या जो मेरे साथ ही घटे हैं उनको बताना चाहता हूं। 1 साल पहले की बात है, 1 सितंबर को मैं कोई 15-20 फुट ऊंचाई से लैडर से गिर गया था अपने घर में। उसके दौरान जो भी पेन हुआ था उसको मैंने अपने जीवन के जो अनुभव है उससे कंट्रोल किया खुद, और बाबा की याद में, इनफैक्ट गिरते गिरते मेरे मुंह से बाबा ही निकला था, आपको सच बताऊं। एंड उस मदद से मुझे एक फ्लोर नीचे आया, खुद सभी लोग आए, मैंने किसी को छूने नहीं दिया। काफी पेन हो रहा था, बैक पेन हो रहा था, तो मैं लेट गया वहीं पे जो कुछ स्टेप्स आया नीचे। उसके बाद अपने आप को जस्ट पेन किलर्स के भरोसे प्लस मेडिटेटिव स्टेट में बाबा को याद किया कंटिन्यूअसली। तो करीब 10 दिन तक मैं डॉक्टर से भी मिलने नहीं गया, क्योंकि मुझे मालूम है बैक में ऐसा कुछ कंप्रेशन जैसा हुआ है। और हम अपने फील्ड में भी सिंस फ्लाइंग में रह चुके हैं, एविएशन मेडिसिन हमारा सब्जेक्ट रहता है, तो बिना घबराए मुझे मालूम था कोई कुछ नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा सर्जन कौन है? सुप्रीम सर्जन है। तो उनकी याद में 10 दिन के बाद मैं पहली बार डॉक्टर से मिला, एक्सरे लिया, तो पता चला कि कंप्रेशन फ्रैक्चर हो गया है और वर्टिब्रा L1 फ्रैक्चर हो गया है। मेरे साथ जो भी थे वो बिलीव नहीं कर पाए कि ऐसे स्टेट में कोई अपने आप को बिना डॉक्टर से मिले रह सकता है। ऐसे नहीं कि सुविधा नहीं थी। उसके बाद मैं आपको बताऊं एक्सपीरियंस, 1.5 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर मैंने साइकिलिंग शुरू किया और करीब 3 महीने के अंदर अंदर 750 किलोमीटर ड्राइविंग करके मुंबई गया। वहां पर भी मैं काफी डॉक्टर से मिल चुका हूं और उन्होंने ये माना, काफी सीनियर सर्जन से मिला हूं, उन्होंने माना कि ये संभव नहीं है बिना मेडिटेशन को ऐड किए हुए। और इसमें कोई दवाई होता नहीं है, सिर्फ पेन किलर पहले 5 दिन के लिए था, उसके बाद होम्योपैथिक दवाई जस्ट किसी का मन रखने के लिए गया और लिया था, क्योंकि उससे तो कुछ होता नहीं है। गोली आपको भी मालूम है मीठा होता है और विश्वास हो तो ठीक हो जाते हैं आप। तो उसके बाद साइकिलिंग में कंटिन्यू रखा, पहले भी साइकिलिंग करता था। और 20 जनवरी को जब प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया था दिल्ली से आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, उसमें मैंने 33 साइकिलिस्ट का प्रतिनिधित्व किया और 55 किलोमीटर साइकिलिंग किया उसके बाद। और आज जस्ट 1 साल हुआ है, मैं फर्स्ट टाइम ऑफकोर्स न्यूरोसर्जन से भी मिल चुका है, लेकिन वो 1 महीने के बाद। और अभी रेगुलर साइकिलिंग में कम से कम 10 किलोमीटर हर दिन करता हूं, 5 से 7 किलोमीटर का लोड, बाजार से भी कुछ लाना हो तो गाड़ियां रहने के बावजूद उसी में जाता हूं, उसी में आता। तो ये सिर्फ हीलिंग, जो भी हीलिंग हुआ है ये मेडिटेशन कंबाइन विथ मेडिसिन तो कुछ था ही नहीं अदर देन पेन किलर और कुछ स्प्रे। और दूसरा, मैं इस विषय में दूसरा महत्वपूर्ण घटना मेरे साथ, क्योंकि वो 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल पहले मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस PIVD बोलते हैं, डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं, तो 3 लेवल में मेरे को डिस्क प्रोलैप्स जज किया गया था। इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, खैर उस समय जब हुआ था उम्र बहुत कम थी, 30s में था मैं, मिड 30s में, लेकिन हमारा फ्लाइंग हेलमेट और जो काफी फ्लाइंग आर्स किए, मैंने फ्लाइंग सॉर्टीज किए, उसके चलते नेक हमेशा क्रेनिंग रहता था। तो मुझे हुआ 3 लेवल का, उसके बाद मैं जल्द से जल्द रिकवर हुआ। और उसके बाद जब मुझे 2012 में ज्ञान मिला, मेडिटेशन का 3 साल कंप्लीट करने के बाद, मैं अपने आप को पैरा जंपिंग करने की बहुत कोशिश किया 28 साल से उस समय तक, लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि फाइटर पायलट को अलाउ होता नहीं है या एनकरेज नहीं करते कि आप जाके जंप करो, क्योंकि उससे अगर कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है तो आप फ्लाइंग नहीं कर पाएंगे फिर, या बहुत 6 महीना 1 साल आप फ्लाइंग से आउट रहेंगे। तो मैंने फिर मेडिटेशन 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने पैरा जंपिंग किया 28.5 साल के सर्विस में, और 50 साल लगभग मेरे उम्र हो गई थी, घर में भी मैंने नहीं बताया था। और मैं जाके करीब 30-35 लोगों के बीच में, मेरी उम्र 49 प्लस, और अगला बंदा जो था, अगला जो मेरे से जूनियर था उम्र में 33-34, और ज्यादातर लोग 20s में ही थे, उनमें लेडी ऑफिसर्स भी थे, और उन सब में एक 28 किलो का पैक लेके, आप में भी कुछ पैरा जंपर्स होंगे, मैंने एनर्जी देखा है, किसी ने, बहुत लोगों ने पैरा जंपिंग किया होगा या कुछ लोगों ने किया होगा, 28 किलो का पैक बोझा पीछे लेकर के, मेन पैराशूट, स्टैंड बाय पैराशूट, हवाई जहाज सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उससे जंप करना, अपने आप को तैयारी करना, ये सिर्फ एक बाबा की याद में ही हो सकता है। और उसको करने से पहले रिक्वायरमेंट ये था कि आपका मेडिकल कैटेगरी A1 G1 होना चाहिए, जिसको शेप वन बोलते हैं आर्मी में। या तो मैं विश्व का पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो एक बार प्रॉब्लम होने के बाद मुझे वापस शेप वन मिला है, और कोई ऐसा नहीं है जिसको इतना प्रॉब्लम होने के बाद शेप वन। यहां तक जिस डॉक्टर ने क्लियर किया, मैं जंप करने से पहले लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने बार बार हाथ जोड़कर मेरे से प्रार्थना किया कि आप नाम वापस ले लीजिए। मैंने कहा आपका काम सर्टिफाई करना है, आप मेरा मेडिकल कैटेगरी अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो आप बताइए। और मैंने उसके ट्रेनिंग, ग्राउंड ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ किया, इंक्लूडिंग फ्रंट रोल, जो उस उम्र में काफी मुश्किल है, और जिन्होंने पैरा जंपिंग किया है उनको मालूम होगा बिना हाथ का सहारा लेकर के रोड में आपको रोल करके खड़ा हो जाना पड़ता है। तो सब कुछ करके भी मैं कर पाया, और आज 20 साल हो गए इस प्रॉब्लम का, सर्जरी नहीं कराया, जबकि सर्जरी पहले दिन ही डॉक्टर ने लिख दिया था एडवाइस सर्जरी, और मैंने उसके अगेंस्ट में लिखा था अनविलिंग टू अंडरगो सर्जरी। उसके बाद में A1 G1 शेप वन का और कोई नहीं है इस दुनिया में। और मेरे कार्यकाल के दौरान रिटायरमेंट से 10 दिन पहले भी मैं कैप्टन बनकर फ्लाई किया, और मैंने Sukhoi 30, MiG-21, हॉक और माइक्रोलाइट, चार टाइप के एयरक्राफ्ट एज ए कमांड एरोस्पेस सेफ्टी ऑफिसर उस उम्र में रिटायरमेंट से पहले तक उड़ा। ये पॉसिबल नहीं है अदरवाइज। ओम शांति।
थैंक यू भाई साहब, आपने अपना प्रैक्टिकल अनुभव हम सभी के बीच रखा। मेरा दूसरा प्रश्न रहेगा हमारे डिवाइन ब्रदर सती भाई जी से। भाई साहब, जैसा पहले बताया, विशेष आर्मी से हैं, और आर्मी की टफ लाइफ आप सभी जानते हैं। फौज में डिसिप्लिन का बहुत महत्व होता है, और यहां भी जैसा कि आप देखते हैं मॉर्निंग 4 o'clock से टिल 10:30 एक शेड्यूल में आपको ये सब यहां बताया भी जा रहा है। तो सती भाई जी, मैं ये प्रश्न हमारी ऑडियंस की तरफ से पूछना चाहूंगी कि फोर्स की लाइफ में बहुत ऐसे सिचुएशंस हम सभी फेस करते हैं कि स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कभी कभी गुस्सा करना पड़ता है, और इन सभी के चलते यहां शांति सिखाई जाती है, पीस के बारे में बताया जाता है। तो वो कौन सी पीस है, वो कौन सी शांति है जिसे हम फोर्स में रहकर, उन सिचुएशंस में रहकर, उनको प्रैक्टिकली अनुभव करके हम आगे बढ़ सकते हैं? तो कैसे हम अपनी उस गुस्से वाली लाइफ से निकलकर शांति को फौज में अपना सकते हैं?
ओम शांति बहन। मुझे कई बार आर्मी के इस 33 इयर्स की जो सर्विस है, कमांड करने का मौका मिला, प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर, बटालियन कमांडर इत्यादि इत्यादि। तो इसमें हम मैन पावर से ही डील करते हैं, अर्थात हमारे नीचे जवान होते हैं। तो चूंकि हमारी जो दिनचर्या शैली और विचारधारा होती है, उसका हमारे कमांड पे बहुत बड़ा असर होता है। क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ा था फ्रॉम द एज ऑफ 18, और जब मैं आर्मी में आया तो मैं 25 ईयर्स का था जब मैंने कमीशन लिया। तो तकरीबन 7 साल का मैंने एक ऐसा सफर तय कर लिया था तब तक, जो अध्यात्म से जुड़ा था। तो मेरी विचारधारा में बहुत कुछ ऐसा था जो बहुत पॉजिटिव था। जैसे मैं फौज में आया, फौज में एक अलग माहौल है, अलग तरीका है फौज में काम करने का, मैंने उसको स्वीकार किया। बट मैंने ये भी तय कर लिया कि जो जीवन मैं अभी तक जी रहा हूं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और इसको जारी रखूंगा। अर्थात जो मेरा मॉर्निंग मेडिटेशन था, जो मेरे स्पिरिचुअल लाइफ थी, मैंने उसको जारी रखा। तो उससे ये हुआ कि मेरी जीवन में जो पॉजिटिवनेस थी, अप्रोच जो थी, वो बहुत पॉजिटिव रहती थी। तो जब भी मैं अपने जवान के साथ जो मैं पीस स्थापित कर पाया और उनसे बहुत सुंदर रिजल्ट्स ले पाया, उसका रीजन ये रहा कि मैं हमेशा उनके साथ संवाद में विश्वास करता था। मैंने हमेशा अपने जवानों का के दो चीजों पे बहुत ध्यान दिया, एक उनके भोजन पे और एक उनसे संवाद करने पे। मैंने देखा कि जितना हम कमांडर के रूप में उनसे संवाद करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके सामने अपनी बातें रखते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन गैप बहुत कम हो जाता है। और जब कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता है तो फिर वो हमें स्वीकार करते हैं। और फिर अगर उस बीच भी कई बार थोड़ी सी सख्ताई दिखानी पड़ती है तो समझते हैं कि यहां पे एक ऑफिशियल रीजन है जिसके लिए सर को ऐसा करना पड़ रहा है, अदरवाइज ही इज वेरी पॉजिटिव। तो कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां मैं और मेरी टीम ने बहुत सुंदर रिजल्ट्स हासिल किए हैं, चाहे वो मिलिटेंसी ऑपरेशन है, कारगिल है या एनसीसी है, इत्यादि इत्यादि। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका जो मेन रीजन होता है टू क्रिएट पीस विद इन दी फोर्सेज इज कि हम जब भी उनसे संवाद करते हैं, अपने जवानों के बीच में होते हैं, तो मैं अवश्य उनसे अपनी, देखो जवान हमें देखता है एज ए लीडर, और वो हमको जब बहुत समय तक देखता रहता है तो वो थोड़ा सा उसके मन में सवाल आता है कि ऐसी जीवन शैली ये ऑफिसर कैसे जी सकता है। नॉर्मली ये माना जाता है कि आर्मी में आप ऑफिसर हो तो मतलब आप खाना पीते खाना आप जरूर नॉनवेज लेते होंगे, थोड़ा ड्रिंक्स को भी इंजॉय करते होंगे, और थोड़ा सा आपके अंदर कुछ व्यसन भी होगा, ऐसा मान के चलते हैं। पर जब वो लंबे समय तक हमें देखते हैं कि ये ऑफिसर किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करता, प्योर वेजिटेरियन है ना, और इसकी एक बहुत विचारधारा स्पिरिचुअल है, तो उनको लगता है कि भाई हमें जानना चाहिए, जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं सर। और मैं भी अपने संवाद में जब भी उनसे मिलता हूं तो समय के साथ जब मैं देखता हूं कि कुछ समय अब मुझे हो गया इनके बीच में, देन आई शेयर माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद देम। तो उससे क्या होता है कि दे अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स विच, जहां उनको लगता है कि हमें ये पता ही नहीं था। जैसे अभी हमारे बीच में इतनी बड़ी सभा बैठी है, अब दो दिन से जो ये सुन रहे हैं, ये शायद इनमें से कई लोगों ने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी जो अब सुन रहे हैं, तो इससे अब इनके लाइफ में जो चेंज आएगा वो बहुत अलग होगा। तो इसलिए संवाद एक बहुत जरूरी चीज है, उससे बहुत बड़े रिजल्ट्स निकलते हैं। और मैं ये मानता हूं कि मेरे लाइफ में, फौजी लाइफ में, जो बहुत सफलता मुझे मिली उसका रीजन ये रहा कि मैंने हमेशा टीम वर्क में काम किया और अपनी बातों को रखने में मैं सफल रहा, और इसलिए मेरे जवान भी मुझे स्वीकार करते रहे और हम सफल रहे हर कार्य में। थैंक यू।
थैंक यू सती भाई। विशेष भाई साहब ने जो हमें इनपुट्स दिए वो ये कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, और जो इस संस्था में सिखाया जा रहा है उसको डेडिकेटेडली फॉलो करने की भाई साहब ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संजीव भाई जी से, जो कि दिल्ली पुलिस से हैं। भाई साहब, कभी कभी जहन में ये क्वेश्चन आता है कि आपकी लाइफस्टाइल, यहाँ जो हम एक आध्यात्मिक लाइफस्टाइल जीते हैं वो सेट है, यू नो, फोर ओ क्लॉक मेडिटेशन करना है, फिर उसके बाद कुछ स्पिरिचुअल वर्जन सुनने हैं, और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पर आप इवनिंग में विशेष हाफ एन आवर मेडिटेशन करते हैं, सेट है कि 10 बजे सोना है और फिर से एक नए शेड्यूल में फिर से अपने आप को ढालना है। तो आपकी एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल सेट है, फिक्स्ड है। हमारे जीवन में कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, यू नो, फौज में कब कोई ऐसी बात आ जाती है और आपको उस समय वहीं पर रहना पड़ता है, तो कोई फिक्स्ड नहीं है लाइफस्टाइल। तो इस तरह से हम अपने को कैसे इस जीवन शैली में ढालें, और विशेष पुलिस में तो रात को भी ड्यूटी आर्ट्स होते हैं, और कैसे फिर आप मेडिटेशन से कैसे उस समय आप मदद लेते हैं, और क्या मेडिटेशन को हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, तो आप अपने अनुभव से क्या बताएंगे भाई साहब?
एक जमाना था लोग घर में बैठ के खाना खाते थे, आजकल चलते फिरते कूदते भागते खाना खा रहे हैं, हाथ में चीज ली हुई है, मेट्रो में भी खा रहे हैं और सब कुछ खा रहे हैं। जब खाना कूदते भागते खा सकते हैं तो ध्यान भी भागते कूदते कर सकते हैं। अगर समय मिले तो आराम से बैठ के ध्यान कीजिए, ना मिले तो चलते फिरते कीजिए, चलते फिरते भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। इसीलिए यहां पहले ही बताया गया कि ओपन आइड मेडिटेशन है, और ये कोई निश्चित नहीं है कि 5 बजे, मतलब आपको 7 बजे ही करना है, जब समय मिले तो 7 बजे करना है, जब नहीं समय मिले तो आपको 12 बजे सोने को मिल रहा है तब 10 मिनट कर लीजिए। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने अपने दांत साफ करने हैं सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। अब जब भी सोने जाते हैं तो जब आप दांत साफ कर सकते हैं तो 5 मिनट मन भी साफ कर लीजिए, नहीं तो बस उसी तरीके से करता चला जाता है। हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत हैं कि 2 दिन हम करते हैं तो 3रे दिन जैसे ही ऊपर नीचे होता है तो वो 3रे दिन का ऊपर नीचे हमारे अंदर का वकील जाग जाता है और वो अगले दिन के 4-5 दिन, 4th और 5वां दिन जो रूटीन में चलना है उसमें हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो इस तरीके से करना चाहिए कि मन को पता लग जाए कि ये छोड़ेगा नहीं, इस तरीके।
थैंक यू भाई साहब। भाई साहब की हर बात में एक हंसी छिपी होती है और बहुत ही अच्छा कहा कि जैसे हम डेली रूटीन में जो भी हमने अपनी अपने को ढाला है अगर वो कर सकते हैं तो मेडिटेशन क्यों नहीं कर सकते। तो थैंक यू भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डिवाइन ब्रदर जगबीर भाई जी से है। भाई साहब, आपसे विशेष हम पूछना चाहेंगे अपने ऑडियंस की ओर से कि जब तक मेडिटेशन को या फिर आध्यात्मिकता को आपने जीवन में शामिल नहीं किया था उससे पहले कैसा लाइफस्टाइल आपने अपनाया और उसके बाद विशेष आपने अपनी जीवन शैली में क्या अंतर पाया? क्या वास्तव में आध्यात्मिकता से ऐसे बेनिफिट्स होते हैं कि जीवन में परिवर्तन आता है, और अगर परिवर्तन आता है तो वो किस तरीके का एक पॉजिटिव परिवर्तन हमारे लिए होता है? तो पहले की लाइफस्टाइल और अब आध्यात्मिक लाइफस्टाइल में क्या चेंज पाया?
जैसा बहन जी ने बताया कि थोड़ा 5 साल का एयरफोर्स का भी एक्सपीरियंस था, तो हमारे दादाजी गीता पढ़ते थे जब भी हम गांव में जाते थे छुट्टियों में, तो बहुत सारी बातें सुनते थे राजयोग के बारे में, धर्म की ग्लानी के बारे में, लेकिन ये समझ नहीं आता था कि ये स्पिरिचुअलिटी को मेडिटेशन को कैसे सीखें। और दिल में तो था कि मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां ये सब हमें जानकारी मिले। तो जब भारतीय वायुसेना में जाना हुआ एज ए टेक्नीशियन, मैड्रास में ट्रेनिंग की थी 4 साल, और मेरे फादर इस संस्था से पहले जुड़े तो उन्होंने बताया कि आप ये कोर्स करो राजयोग का कोर्स। तब तक मैं अशोक भाई गावा के कनेक्शन में आ चुका था, तो उनसे प्रेरणा लेकर के फिर जब यहाँ ज्वाइन किया 1995 में, तो 5 साल तक हम लोग साइंटिस्ट और इंजीनियर्स विंग में थे। वहाँ देखा कि लाइफ कैसे चेंज हो रही है लोगों की राजयोग मेडिटेशन से। बहुत सारे साइंटिस्ट कोई ड्रिंक करते थे, कोई स्मोकिंग, किसी की फैमिली ब्रेकडाउन, और बहुत जल्दी 1-2 महीने में ही मैसेज आ जाता था कि बिल्कुल एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो तब मुझे लगा कि ये तो एक बहुत मिरेकल चीज है। अगर यही ट्रेनिंग हम और अशोक भाई एक बार 2000 में बैठे थे तो हमने प्लान किया कि स्पोर्ट्स और सिक्योरिटी का भी ऐसा कुछ प्लान करें ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा हो। तो दोनों विंग एक साथ बनी, 2 साल एक साथ रहे और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट विंग्स बनी। तो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, कमांड में मैंने गोल्ड मेडल लिया था 400 मीटर में, उसके बाद एयरफोर्स में 7 इयर्स कंटिन्यूअस गोल्ड मेडल लिए बॉक्सिंग में, फिर साइकिलिंग में एक बार कोई साइकिलिस्ट नहीं था तो कमांडिंग अफसर ने कहा कि भाई आप जा सकते हो क्या? मैंने कहा सर हाँ। तो एयरफोर्स में सिल्वर और सर्विसेज में गोल्ड मेडल मिला। तो अपने को ये पता नहीं था कि मेडिटेशन और राजयोग को इंक्लूड करके हम अलग अलग स्पोर्ट्स में इस टाइप से एक्सेल कर सकते हैं। और जब यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में ये स्पोर्ट्स विंग बनी तो फिर तो नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। तो 2003 में हमारे जो साइना नेहवाल इनके कोच थे द्रोणाचार्य अवार्डी मोहम्मद आरिफ, उन्होंने ये ट्रेनिंग उनकी कराई। तो आप देख रहे हो कि कितना उनके लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर शूटिंग टीम में सन्नी थॉमस सर ने, बॉक्सिंग में जीएस संधू। तो इस तरह से करते करते इस जैसा बेंजी ने बताया कि उसने अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में भी, तो ये एग्जांपल्स मैंने देखे कि 2008 बीजिंग ओलंपिक, सिंगापुर यूथ ओलंपिक, रियो ओलंपिक गेम्स, फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काफ़ी इस चीज़ को सराहा कि आप माइंड पावर ट्रेनिंग जो कराते हो ये हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होता है लेकिन वो सुपर माइंड से कनेक्ट नहीं करा पाते हैं, उनकी ट्रेनिंग केवल माइंड तक रहती है। यहाँ एक एडिशनल बेनिफिट है कि हम लोग कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सुपर माइंड, इनकी नॉलेज दे करके उनको ट्रेनिंग कराते हैं। और इसमें 5 टूल हम यूज करते हैं, एक तो मेडिटेशन है, दूसरा है विजुलाइजेशन। कोई भी मैच खेलने जा रहे हो 5-10 बार माइंड में विजुलाइज करो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। फिर तीसरा है अफर्मेशन, ना आई एम ग्रेट, आई एम चैम्पियन, आई एम वंडरफुल, पॉजिटिव बातें करना। और चौथा है सेल्फ टॉक, ना अपने आप से पॉजिटिव बातें करना। और फिर साइलेंस, ये पांचों चीज़ें मैंने यहाँ राजयोग और ब्रह्म कुमारीज में सीखी, इनके ऊपर रिसर्च किया, यूएसए से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पीएचडी किया। तो अब गवर्नमेंट के साथ मिलकर के बहुत अच्छे ट्रेनिंग्स चल रहे हैं। तो आप भी अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा एथलीट हो जिसको मेंटली इतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पा रही हो तो हम लोग जूम के ऊपर भी ट्रेनिंग करा देते हैं। और फिजिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग तो हमारे कोचेस बहुत अच्छी कराते हैं लेकिन मेंटल ट्रेनिंग जो ब्रह्मा कुमारी इसमें कराई जाती है ये इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब से मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें आया हूँ मैंने 27 हाफ मैराथन दौड़ी हैं यहाँ से लेकर माउंट आबू तक। और प्योर वेजिटेरियन, आप देख रहे हो यहाँ पे खाना जो बिना प्याज लहसुन के भी है, प्योर वेजिटेरियन है। और पिछले 4 साल में मोटर बाइक रैली कम से कम 1,00,000 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई होगी। अभी भी यहाँ से आबू से अम्बाला 900 किलोमीटर गए थे एक दिन में ही, यहाँ से पणजी, गोवा, पूना। तो इस तरह से बहुत अच्छी फिटनेस बनी रहती है जब हम राजयोग और ये 5 टूल जो मैंने बताए इनको हम, जैसे भाई जी ने बताया कि 10 मिनट कर लें लेकिन उठने के तुरंत बाद 10 मिनट दे आर इम्पोर्टेंट। जब भी सो के उठते हैं, चाहे दोपहर को, सुबह या रात को, जब भी आपकी नींद खुल जाए तो पहले 10 मिनट हमें कोई भी दुनियावी काम नहीं करना है, या तो विजुलाइज या मेडिटेशन, क्योंकि उस समय ब्रेन होता है अल्फा लेवल में और हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कई हजार गुना ज्यादा हो जाती है। तो इस चीज को आप अपने जीवन में अपनाएं, मैंने भी अपनाया, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, यूट्यूब चैनल भी हैं उसमें भी आप देख सकते हो एक्सपीरियंसेस। कैसे जो बंदे 1 महीने पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशिया चैंपियनशिप में सेकंड थे, राजेंद्र मनी एंड अंकुर शर्मा, 1 महीने के बाद हंगरी में जाकर के दोनों वर्ल्ड चैंपियन बने बॉडी बिल्डिंग में। और कोच थे हमारे नेवी के नायर साहब। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। अभी क्या था कि सती भाई ने एक प्रोग्राम रखा पिथौरागढ़, तो अभी क्योंकि जब पैशन हो जाता है तो उसमें फिर थकान तो होती नहीं है, तो मैं बाइक से यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली से फिर हल्द्वानी, हल्द्वानी से चंपावत, चंपावत से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से वापस नैनीताल, मतलब ये तो 3-4 हजार किलोमीटर का था वो, तो उसका रिमाइंड करा रहे हैं सर। तो इट वॉज अ ग्रेट एडवेंचर फॉर मी। थैंक यू।
थैंक यू जगबीर भाई जी. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सती भाई जी. सती भाई जी, आप विशेष मेन फोर्स आर्मी से फौज से हैं, और कभी कभी ऐसे देखने में आता है कि ये स्पिरिचुअल लोड लाइफस्टाइल है, ये बहुत डिफिकल्ट है. तो क्या आपके पास कोई फौज का ऐसा कोई ऑपरेशनल कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने किया हो फौज में युद्ध करते हुए, आपने आध्यात्मिकता को शामिल किया हो, उसका कोई एक छोटा सा अनुभव हम सभी के बीच रखें तो बहुत ही बेनिफिट होगा हम सभी के लिए.
थैंक यू. बहुत सारे अनुभव हैं इस 33 इयर्स में, और मैं विशेष तीन बार तो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस में शामिल रहा हूं, कश्मीर में, नागालैंड और मणिपुर में, और साथ ही साथ 2001 से 3 में एलसी पे तैनात था जो कि कारगिल बटालिक सेक्टर था जहां 17,000 फीट पे मैं था. तो आज मैं चाहूंगा कि मैं उस 17,000 फीट की ऊंचाई के अपने कुछ अनुभव रखूं कि वहां पे जब हम पहुंचे तो 17,000 फीट में हमारी पोस्ट थी, हमारे ठीक सामने 17,500 पे दुश्मन की पोस्ट थी, और अचानक ही दुश्मन ने हम पे फायर शुरू कर दिया. कारण ये था कि वो एक छोटा सा मोर्चा खोलना चाह रहा था, एक सेंट्री का पोस्ट बनाना चाह रहा था, जिसपे हमने ऑब्जेक्शन किया और हमने हवा में दो गोली उसको डराने के लिए फायर की. तो उसने उसका जवाब भीषण फायरिंग से हम पे दिया. वो ऊपर था 17,500 फीट पे, हम 17,000 पे थे. ये फायरिंग 3 दिन तक चली दुश्मन की तरफ से. तब मैं उस पोस्ट के ठीक बगल वाली पोस्ट 15,000 फीट पे तैनात था, और मेरे नीचे एक ऑफिसर था, कैप्टन, जो यंग ऑफिसर था, वो वहां तैनात था. जब तीसरे दिन मैंने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है और ये ऑफिसर जो यंग ऑफिसर है इससे संभल नहीं रहा, तो मैंने कमान अधिकारी को बताया कि सर मैं स्वयं अब उस स्थान में जाना चाहूंगा, और मैं तुरंत रात को 12 बजे उस स्थान की तरफ रवाना हुआ और मैंने उस स्थान को अपने कमांड में लिया. अगले दिन फिर दुश्मन ने हम पे जबरदस्त फायरिंग की दिन में. क्योंकि मेरा आदत थी, मैं जब भी कोई भी कार्य करता हूं तो अपने को एक इंस्ट्रूमेंट समझता हूं कि भाई कराने वाला तो परमात्मा है, हम उसके बच्चे हैं और हम उसकी याद में यहां बैठे हैं. तो वो मेरा एक फॉर्मूला रहता था काम करने का. तो मैंने जो दुश्मन का जवाब तो हम दे रहे थे, बट चूंकि वो ऊपर था और नीचे थे तो उसको वो ज्यादा असर हम पे कर रहा था. तुरंत मुझे एक आइडिया क्लिक हुआ जो 3 दिन से किसी के विचार में नहीं आया, और वो आइडिया ये था कि हम इस पे मोटर फायर करेंगे. जो आपको सबको पता है 81 mm मोटर हमारे पास होती है, इन्फेंट्री का तोपखाना कहते हैं इसको. तो हमने उसकी फायर उस दुश्मन पे खोली जिसकी उसको उम्मीद कहीं से भी नहीं थी, और उस फायर के बाद हमारा दुश्मन शांत हो गया क्योंकि वो बहुत जबरदस्त फायर उस पर गिरा. उसके बाद अगले दिन सुबह भी हमने उस पर वो फायर गिराया, तो 10 दिन तक हमारे बीच में कोई फायर नहीं आया, बट दुश्मनी बनी रही. वो उसने हमारी सारी हरकत रोक दी क्योंकि वो ऊपर था, हम नीचे थे, तो उसने हमारी सारी हरकतें रोक दी. हमें जैसे कीड़े रेंगते हैं ऐसे रेंग रेंग के अपने पोस्ट में हरकत करनी पड़ रही थी. महीना अक्टूबर का था, -5 डिग्री 4 डिग्री की तरफ टेम्परेचर आ रहा था, बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी, ठंडा होना शुरू हो चुका था. 17,000 फीट पे तकरीबन 8 फीट बर्फ गिरती है, -20 डिग्री टेम्परेचर होता है, और 6 महीने तक हम टिन का राशन खाते हैं और पानी जो पीते हैं वो बर्फ पिघलकर पीते हैं, उसी को पिघलकर नहाते भी हैं. बट हमारे हौसले में कोई कमी नहीं थी. कुछ देर बाद हमें ये लगा कि अब यहां पे दुश्मन ये पाकिस्तान नहीं है, ये दुश्मन हमारा ये नहीं है जो सामने बैठा है, हमारा दुश्मन यहां पे ये बर्फ है. क्योंकि बर्फ में आप सब जानते हैं जब बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाती है तो वो जब सूखती है धूप से तो फिसलती है, और उसमें जवान गिर के मरते हैं. कई सारे जवान इसलिए नहीं मरते कि दुश्मन गोली मारता है, बट वो बेचारे फिजिकल कैजुअल्टी हो जाते हैं, अर्थात फिसल जाते हैं बर्फ में. तो अभी हमको उस दुश्मन से भी लड़ना था. तो मन में विचार आया, क्योंकि हम राज्यों का अभ्यास करते हैं, हम हरेक को आत्मा देखते हैं, तो हमारे अंदर एक लचीलापन होता है कि हम किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं, दुश्मन को भी स्वीकार कर सकते हैं. तो एक विचार आया कि अब यहां पे दोस्ती करनी चाहिए और शांति को बनाए रहना चाहिए. तो मैंने अपने बॉस से बात की कि सर अब यहां पे हमने दुश्मन को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर रखा है, अगर आप इजाजत दें तो हम इससे दोस्ती करके यहां शांति बहाल कर दूसरे दुश्मन नंबर 2 जो बर्फ है उससे लड़ना चाहेंगे, क्योंकि हालात यहां पे ठीक नहीं है. तो उन्होंने स्वीकृति दी पूरे बहस करने के बाद मेरे से, और मैंने फिर दुश्मन से वार्तालाप स्थापित किया. शुरू में तो वो दुश्मन तैयार नहीं था, पर मैंने अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस के दांत उससे बातचीत की. उसको उम्मीद नहीं थी कि क्या बातचीत करना चाह रहा था। मैंने बातचीत के दौरान उसको बिल्कुल बहुत पॉजिटिव ढंग से मोटिवेट किया, उसने दिल से स्वीकार किया। उसके बाद हमारे बीच में शांति स्थापित हुई। 1.5 साल तक हमारे बीच में कोई फायरिंग नहीं हुई, हमारा एक भी जवान कैजुअल्टी नहीं हुआ और हम बहुत शांति से अपने नए लोकेशन मेरठ पहुंच गए। तो कहना यह चाहता हूं कि राज्यों के अभ्यास से आपको जब जरूरत थी तो आपने दुश्मन को दबा के भी दिया रखा, और जब जरूरत नहीं थी तो प्यार से स्नेह से शांति बनाए रखे, आप अपने जवानों को सफलतापूर्वक अगले स्टेशन पे पहुंचा दिया आपने। धन्यवाद।
थैंक यू सती भाई। भाई साहब का हमने यही अनुभव बहुत विस्तार से सुना है, लेकिन थैंक यू, आज आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बड़ा अनुभव हम सभी के बीच रखा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारे राव भाई जी के साथ है। भाई साहब, हमारे बीच जितने भी ऑडियंस में भाई बहने बैठे हैं, कई बार इतना आध्यात्मिक ज्ञान सुनकर जहन में एक प्रश्न उठता है कि ये जो आध्यात्मिकता है शायद रिटायरमेंट के बाद देखेंगे, रिटायरमेंट के बाद ऐसा लाइफस्टाइल अपना बनाएंगे, अभी शायद ऐसा कोई जरूरत ऐसा लगती नहीं है, या फिर बहुत डिफिकल्ट है तो अभी बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो शायद हम मीट ना कर पाए इस स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल के साथ उस प्रोफेशनल लाइफ को। तो क्या जिम्मेवारियों से जब फ्री हो जाएंगे तब आध्यात्मिकता को अपनाना चाहिए या उससे पहले ही? और अगर जब आपका ये आध्यात्मिक लाइफस्टाइल शुरू हुआ था तब आप जरूर एयरफोर्स में थे, और आपको कौन सा ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर इसमें महसूस हुआ कि आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही इस आध्यात्मिकता को भी साथ में जिया और रखा?
ओम शांति। सबसे पहले मेरी वाइफ जिसे हम युगल कहते हैं ज्ञान में, और बच्चा, ये दोनों ज्ञान में आए मेरे से पहले, और हमारे कुछ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स थे कि उनको जो पसंद है वो हम उनके लिए करते हैं, जो हमें पसंद है हम करते हैं, हम इंटरफेयर नहीं करते बिल्कुल। तो ये अरसा कोई मामूली सा नहीं था, करीब 5 साल का था। तो मैंने कहा आपको जो अच्छा लगता आप कीजिए, आपको फुल फ्रीडम है, आपको जहां जाना है जैसे जाना है, जिस चीज को भी पोजेस करना है। आपको ये जान के हैरानी होगी या काफी लोग ऐसा समझते हैं कि उन्होंने आके यहाँ फ्लैट भी खरीद लिया, और मैंने अपने आप को हल्का कैसे किया था, या मैं पहले से ये क्लियर था मुझे शादी के टाइम से कि वो मेरी 50% की पार्टनर हो, बाद में मैं चतुराई से मैं अभी बोलूंगा कि उनको 51% का पार्टनर बना दिया था, और मैंने कहा था कि मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर हूं। तो मैंने कहा डिसीशन सब आप लो, मुझे जो मैं काम कर रहा हूं उसमें मैं संतुष्ट हूं, और मुझे फुल टाइम मिलता था। तो उन्होंने जब यहां आए, ज्ञान लिया, बच्चा भी आया था, बहुत छोटा था उस समय, और उसके बाद उन्होंने कहा फ्लैट लेना है, मैंने कहा बेशक लो। मुझे बोला, डायग्राम देखा, मैंने कहा नहीं, आपको पसंद है रहना, आपको है आप लो, बाद में देखेंगे क्या होता, क्योंकि तुरंत तो रहना नहीं है वहां पे। तो उन्होंने फ्लैट लिया, इनॉग्रेशन में सभी आ गए, और उस फ्लैट को देखने के लिए मैं 5 साल आया। 5 साल तक लोग ये सोचते रहे कि शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मैंने कहा कोई गड़बड़ नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे कुछ इश्यूज है, प्लस मैं उनके जीवन में भी एक माइनर सा, खैर उस समय मेरी चक्षु या आंख बोलते हैं पूरी तरह खुले नहीं थे, तो मैं देख नहीं पा रहा था कि क्या उनको हासिल हुआ है, लेकिन कुछ न कुछ उनमें बदलाव जरूर था। क्योंकि मैं पूरा ओपन माइंड नहीं था इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा था, अभी मैं समझ सकता हूं तुरंत किसी के बदलाव को, एक सेकंड में समझ सकता हूं, लेकिन उस समय उतना शक्ति या बल नहीं था, क्योंकि हम अपनी दुनिया में खोए हुए थे, और जिस दुनिया में थे हम समझ रहे थे कि इससे बढ़ के कुछ है नहीं। और हमें ऐसे भी ट्रेनिंग में ऐसा बताया गया या ऐसा हम देखते हैं कि लाइफ में बहुत रिस्क है, तो हम लाइफ को पूरी तरह जीते थे, हम जिस में भी होते थे, चाहे बाइक में हो, एरोप्लेन में हो, किसी में भी हो, हम उसको उसके मैक्सिमम में पहुंचाते थे। जैसे आपको जान के हैरानी होगी कि मैंने कार को 200 किलोमीटर पर आर चलाया हुआ, एक नहीं दो दो ब्रांड को। तो मैं और मेरा बच्चा भी, मुझे, मैं बैलगाड़ी में भी हूं तो मुझे किसी को मुझे ओवरटेक करने नहीं देता था, उसमें भी ये कूट कूट के भरा था। मैं किसी भी इसमें वो कोई जा रहा बोला नहीं ओवरटेक नहीं करने देता था उसको, बोलता चलाओ चलाओ और तेज चलाओ। तो इस तरह से ये हुआ। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद जब पहली बार आया, 5 साल में उनसे पीछे हूं, जूनियर हूं, मैंने ये महसूस किया कि आपने जब भी आपको पहला अपॉर्चुनिटी मिलता है आप उसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप नहीं तो वंचित रह जाएंगे। बाद में आप जरूर आपको इसका पछतावा होगा कि मुझे ये चांस फलाने साल में भी मिला, मैंने नहीं लिया। और अब जब हम 2022 सितंबर करीब करीब एंड हो रहा, अभी हम बात कर रहे हैं, विश्व की परिस्थिति ठीक नहीं है, जल्द से जल्द आप इसको पूरी तरह सिर्फ ज्ञान एक्सेप्ट करना इन्हें धारण करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसा आप एक नया गाड़ी खरीदते हैं या घर खरीदते हैं, आप जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं ताकि आप उसका सुख भोग सको। अभी रिटायरमेंट के बाद आप लेंगे, मान लीजिए आलिशान महल भी, तो आपको ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के लिए भी लिफ्ट चाहिए, और फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड या थर्ड फ्लोर में तो लिफ्ट काम करेगा नहीं वैसे, तो आप उससे वंचित रह जाएंगे। और अभी जितने पैनलिस्ट ने बोला है, स्पोर्ट्स से लेकर हर चीज, मैंने इस 10 साल के छोटे अंतराल में, क्योंकि ये मेरे सभी लोग मेरे से बहुत सीनियर हैं, डबल से भी ज्यादा सीनियर हैं, मैंने उसको हर जगह इस्तेमाल किया। मैं वहां से स्टार्ट करता हूं, आपको जान के आपको यकीन होगा, अब मैंने स्पोर्ट्स में बाबा और नॉलेज को गोल्फ में भी यूज किया है, यहां तक जहां मेरे से अच्छे और अच्छे प्लेयर्स, लो हैंडीकैप के प्लेयर्स, उनके बॉल गुम हो जाते हैं, मेरा बॉल कभी गुम नहीं होता है, क्योंकि मेरा बॉल मैं गलत भी शॉट मारता हूं और जंगल में भी चला जाता है तो बाबा उसे ढूंढ के देते हैं मुझे। और मेरी ये बैक इंजरी के बाद भी मैंने गोल्फ खेला है, जो डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया था, लेकिन मैंने बाबा को लिया, उनको खेला, और हम बाबा को हर संबंध से देखते हैं ज्ञान में, तो बाबा को एज ए कैडी भी मैंने यूज किया है, उन्होंने मेरे शॉट, मेरे बॉल कठिन परिस्थिति से हर जगह से उन्होंने निकाला। जहां तक बाकी और स्पोर्ट्स एडवेंचर की बात है, हम जिस कार को मैं चला रहा था, कार का चक्का निकल के चला गया और ब्रिज से नीचे गिरा, जहां पे बाजार था, किसी को चोट नहीं लगा, और मेरा वही चक्का जिसको लगते हुए वो नीचे गिरा, वही उस चक्के को वापस ले आया। हालांकि कोई चोरी करके ले जा रहा था, वो एलॉय व्हील था, काफी कॉस्टली था, तो लेके चला गया, लेकिन उसको भी वो बंदा बाइक में जाके लाया। मैंने उसी कार में उसी टायर को लगा करके सिर्फ एक नट टूट गया था। उसके लिए भी बाबा ने, बीच सड़क में हम मर्सिडीज में जा रहे थे, उसके बावजूद उसके लिए भी मैकेनिक मेरे को मुहैया कराया, और मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा सिर्फ 3 घंटा लेट बस। और उसी रिम पे चल रहा है गाड़ी, अभी भी उसी रिम पे चल रहा है। हालांकि मेटल का 70 के स्पीड में अगर आपका चक्का निकल जाए तो वो टूट जाता है। मुझे पर्सनली अनुभव है इसका बहुत सारा, इंक्लूडिंग फ्लाइंग में और व्हीकल में, तो ऐसे ऐसे घटनाएं। तो बाबा को आप हर जगह यूज कर सकते हैं। मैंने अपने मेडिसिन में यूज किया, स्पोर्ट्स में यूज किया, यहां तक आप कहीं भी अटक जाते हैं। जैसा पहली बार मैं आपको बताऊं छोटे से वाक्या, हम पासपोर्ट के लिए गए, पासपोर्ट में मेरा बच्चा यहां था, ऑफकोर्स पहली बार उसमें ऑब्जर्वेशन थे, तो हमारा पासपोर्ट हो गया था, बच्चे का नहीं हुआ, वो शांतिवन में मधुवन में था। हम वापस लखनऊ में, मुझे उन्होंने टोकन दिया और उस पासपोर्ट को अप्रूव किया। अप्रूव करने के एक स्टेप पहले जो ऑफिसर वहां थे, उन्होंने कहा आपको टोकन कैसे मिला जब कैंडिडेट यहां नहीं है। पासपोर्ट ऑफिस में बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन वहां भी बाबा ने करा। ऐसे हजारों हजारों अनुभव है इस 10 साल में। आप बाबा को हर जगह यूज कर सकते हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप करेंगे, आप लूजर रहेंगे। और दूसरा, ये जो लोगों ने अभी टाइम के बारे में बात किया है, चाहे मैंने 2 घंटा सोया हो, 3 घंटा सोया हो, या 4 घंटा सोया हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आपका आधा घंटे का अच्छा मेडिटेशन 2 से 2.5 घंटे का स्लीप को मेकअप कर लेता है। हाँ, लंबे समय तक नहीं, लेकिन 1 हफ्ता तक आप निकाल सकते हैं। और मैंने फ्लाइंग किया उसके बावजूद भी, मेडिटेशन के बाद भी, गोल्फ तो खेला ही है, और हर कार्य किया, किसी भी कार्य में रुकावट नहीं, और हर जगह उससे ज्यादा सक्सेस के साथ किया। जैसा कल सती ने बताया, मैं जितना टेम्परामेंट का था, जैसा एज ए फाइटर पायलट काफी एग्रेसिव होते हैं, हम किसी को जाने नहीं देते आगे, नहीं अदरवाइज वो आपको शूट कर देगा, तो आपको उसको एक्शन, पहले आप एक्शन थ्रिलर में भी देखते हैं, पहले आपको एक्शन ले लेना होता है, ज्यादा सोचेंगे तब तक आप चले गए। तो लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बिना अपने रैंक को यूज करे हुए मेरे जूनियर्स मुझे ज्यादा अच्छी तरह फॉलो किए, क्योंकि उन्होंने दिल से किया। पहले डर से करते थे, बाद में उन्होंने दिल से किया। यहां तक बच्चा को भी एक बार आप किसी चीज के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं, जैसा हम ज्ञान में नहीं होता तो बच्चा जिद करता, हमें बाइक चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें तो बोल करके देना पड़ता है कि ये ले लो अब, ये ले लो अब, और उसके उसके एक्सपेक्टेशन से भी पहले हम दे देते, उसे मिल जाता है। तो ज्ञान आप अगर जितना लेट लेंगे उतना ही आप इसके बारे में सोचेंगे। और दूसरी बात, दुनिया का परिस्थितियां ऐसी बदल रही हैं, आप में अगर ज्ञान और योग का पावर रहेगा तो आप उसको ओवरकम कर पाएंगे अच्छी तरह और जिंदगी को बहुत अच्छी तरह जी पाएंगे। ओम शांति।
थैंक यू भाई साहब, बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल अनुभव। और विशेष जैसे भाई साहब ने बताया, भाई साहब एक शब्द बार बार यूज कर रहे थे, बाबा, तो उस परम शक्ति, उस परमात्मा, उस सुप्रीम रूह को जब हम बहुत ही मीठे अपने इमोशंस के साथ याद करते हैं, मीठे शब्दों में हम उन्हें बाबा कहते हैं, और बाबा मीन्स बहुत ही, वो मेरा पिता है, इसलिए हम मीठा शब्द उसके लिए यूज करते हैं। और भाई साहब का कहने का ये मीनिंग भी था कि उस परमात्मा को जब आप बहुत ही करीब अपने महसूस करते हैं तो जो उनसे शक्ति मिलती है वो आपके छोटे छोटे काम भी मिनटों में कर देता है। तो वो प्रैक्टिकल उनके कुछ अनुभव आपके बीच रखे। और सेकंड्स लगता है भाई साहब कह रहे हैं, मिनट वो बहुत दूर की बात है, सेकंड्स में आपके सभी काम बन जाते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष ये क्वेश्चन आप सभी के बीच में मैं बता रही हूं और आप सभी के बीच से ही आया है ये क्वेश्चन, और मैं विशेष संजीव भाई जी से पूछना चाहूंगी। आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा सेटअप यहां देख रहे हैं, हेडक्वार्टर है ये हमारा ब्रह्म कुमारीज का, नेशनल हेडक्वार्टर और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हमारा लंदन में है, और करीब हमारे 10,000 सेवा केंद्र 135 देशों में खुले हैं। आप कहीं भी जाते हैं लगभग 2-3 किलोमीटर पर आपको हमारा सेंटर जरूर नजर आ जाता है। तो आप इतना बड़ा सेटअप देख रहे हैं और आप ये कोर्स के लिए भी आए हैं, लेकिन हम सुनते हैं कि 7 डेज कोर्स भी अगर हम लोकल सेंटर पर जाएं करने के लिए तो कोई फीस, कोई चार्जेस हमसे नहीं लिए जाते, लेकिन जहन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि इतने सारे डेडिकेटेड ब्रदर्स सिस्टर्स यहां पर अपनी सेवाएं अपने निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं, तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है? इतना फाइनेंशियल जो भी खर्चा है, फाइनेंस कहाँ से आता है और कैसे चलता है? तो संजीव भाई जी आप बताइए कि ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रहा है, और विशेष क्योंकि सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है, डेडिकेटेड है सभी सिस्टर्स, तो ये खर्चा और ये सब कैसे जी?
ये ब्रह्मा कुमारी जी है जो पुलिस वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तक हम दुनिया से पूछते थे तुम्हारे पास ये पैसा कहां से आया, आज बहने पूछ रही है, आपको हक है। मेरे सामने ही बहनों से भी कईयों ने पूछा कि ये फंडिंग कहां से होती है। हमारे पास 3-4 मिथ हैं और गलत फहमियां हैं। हम जब भी बहुत बड़ा सेटअप देखते हैं तो हमारे मन में एक आता है, पैसा बाहर से आता है, विदेश देता है, तो विदेश ऐसा थोड़ा आम का पेड़ लगा है सबको बांट रहा है, विदेश से नहीं आता, गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट देती नहीं है, गवर्नमेंट लेती है, आपका पैसा ले रही है ना टैक्स के रूप में। यहां चार्ज कोई मेंबरशिप फीस नहीं है क्योंकि ये कोई कॉरपोरेट या कंपनी नहीं है। ये सेम क्वेश्चन मैंने भी पूछा था आज से 25-26 साल पहले जब मैं वहां बैठा था कि आप अपने खर्चों को कहां से निकालते हैं, आप फीस भी नहीं लेते, कम से कम कुछ तो फीस रखिए। तो बहन ने बहुत प्यार से कहा हम कितनी रखें, तो ये कितनी में बड़ा कंफ्यूजन रहा। तो उस बहन ने बड़े प्यार से समझाया कि यहां धन मांगा नहीं जाता, भगवान ने हमें मांगना नहीं सिखाया। जब हम मांगते नहीं हैं तो लोग अपने आप आकर देते। यहां वो नहीं देते जिनकी पॉकेट में है, पॉकेट बड़ी है, यहां वो देते हैं जिनका दिल बड़ा है। और जब बड़े दिल वाले कुछ भी थोड़ा देते हैं तो उसका असर पड़ता है। नो डाउट खर्चा होता है, आप भी आए हैं, हम भी आए हैं, हम 3-4 दिन से रह रहे हैं और 3-4 दिन रहेंगे, सब कुछ चल रहा है, खर्चा होता है, लेकिन वो खर्चा कहां से निकलता है? बिल्कुल परिवार की तरह ही ये चलता है। सबसे बड़ी बात, पहले बात यहां टैलेंट डोनेशन है। क्या डोनेशन है? टैलेंट डोनेशन है। यहां सब कुछ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जब मकान बना था तो आर्किटेक्ट आए, उन्होंने फ्री में नक्शा, फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा फ्री में दिया, आपका कोई सगे भाई अगर आपका आर्किटेक्ट है तो आपका मकान में वो आपको ये थोड़ा बोलेगा मैं फ्री में बनाऊंगा, आप हक से बोलेंगे नक्शा बना। तो ऐसे ही सारी चीजें वैसे ही होती चली गई। आपके तो 4 भाई होंगे, कोई आर्किटेक्ट होगा, कोई इंजीनियर है, हमारे यहां तो अनगिनत भाई है। उसके बाद कणे कणे से तालाब भरता है, कणे कणे से तालाब भर जाता है। यहां हम सब मिलकर सहयोग करते हैं। मान लो मैं इस संस्था में जुड़ा, संस्था में आने से पहले कुछ मेरी बुराइयां थी, कुछ ऐब थे, कुछ खर्चे थे, वो वहां जाता था, जब मैं यहां आया तो वो बचा, तो मैं वो कहां डालूंगा। अगर ये फीस तय कर लेते तो मैं उतनी ही डालता। जब इन्होंने मांगा ही नहीं तो मैं उस धन सहित खुद भी भंडारी में घुस गया हूं, नहीं तो इस तरीके से सब कुछ हो गया। तो यहां हम अपना मैक्सिमम देते हैं। और यहां एक बड़ी अच्छी खासियत है, आप जब भी कभी कुछ करेंगे तो ये नहीं भाव रहता कि हम भगवान को दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, नहीं, हम जमा कर रहे हैं। ईश्वरीय बैंक में, और वो ब्याज सहित मिलता है। ये तरीके से होता है। अभी जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, ऊपर भी हो रहे हैं, हमारे सेवा केंद्रों पर भी होता है, तो हम सब मिलकर उसको शेयर कर लेते हैं और खर्चा बट जाता है। जैसे किसी के घर शादी होती है तो सब मिलकर सगन डालते हैं ना, नहीं कुछ और सिस्टम होता है। तो ऐसे ही जब हम यहां सारे मिलकर आते हैं तो जब कभी प्रोग्राम हुआ उसके बाद हम इकट्ठे होते हैं तो सब मिलकर अपने शेयर उसमें डालते हैं और उसी हिसाब से हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, जिस तरह मैंने अपनी मां को जब भी कभी धन दिया तो ये सोच के नहीं दिया कि मेरी मां ने मुझ पर कितना खर्चा किया। खर्चे के हिसाब से थोड़ा धन देते हैं, नहीं, मां ने जब मुझ पर खर्चा करा उसने हिसाब नहीं रखा, तो जब मैं रख कर रहा हूं तो मैं क्यों हिसाब रखूं? तो ये परिवार के हिसाब से ऐसा चलता है। जब आपका मेरा सबका सहयोग इसमें जुड़ता है, धन का, तन का और मन का, तो इसमें बरकत आती है। यहां 20,000 में वो काम हो जाता है जो बाहर 20,00,000 में भी नहीं होता। तो इसीलिए आप जब भी कुछ दें उसके साथ मन जरूर लगा के दें। ये मेरी तरफ से सहयोग और ये मानवता की सेवा में, ये भगवान के घर में, आप देखिए उसकी बरकत कितनी होगी। ये मैंने अपने जीवन में बनाई। तो ऐसे ही ये फंडिंग होती है। मैं बिना देखे अनुभव कर रहा हूं, हमारी बहन मुझे देख रही है
और अगर वो दो मिनट का समय दे तो मैं कुछ सुनाऊं या अगले कुछ के लिए। हाँ, हमारे यहां ऐसे ज्ञान सरोवर परिसर बना था, तो उसमें हमारे बड़े दादी जी प्रकाशमणि दादी जी थे, उनसे देन गवर्नर जो उस समय तत्कालीन गवर्नर थे चन्ना रेड्डी जी, उन्होंने आके कहा कि इसमें मैं कुछ सहयोग देना चाहूंगा। तो उन्होंने दादी जी ने समझाया कि भाई हमारे कहते कैसे इसको आप बनाओगे ज्ञान सरोवर जब आप कल या परसों देखने जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई बहनों ने बताया है कि इसमें 45 करोड़ रुपया लगेगा, ये 94 की बात है, और ये हमारे भाई बहनों ने बताया कि 3 साल में हम पूरा कर लेंगे। तो उन्होंने उस समय अपने सारे आईएएस इंजीनियर उन सब अधिकारियों की मीटिंग बुलाई कि आपको ये जो दादी जी हैं ये बताएंगे मैनेजमेंट कैसे ब्रह्मा कुमारी का चलता है। तो उन्होंने कहा आपके पास इस समय कितना धन है, तो जिस समय कुछ मिलता है तो उसका कुछ परसेंटेज हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारे पास थोड़ा सा इसका रखा हुआ है, कुछ 18-15 लाख रुपए थे। तो उन्होंने कहा हमारे यहां जब भी कोई कार्य शुरू होता है तो हर सेवा केंद्र पर एक भंडारी रखते हैं और उन भाई बहनों को कहा कि हर रोज 1 रुपया आप डालेंगे। कितना डालेंगे? 1 रुपया डालेंगे। तो फिर दादी ने उन चंद्र ने पूछा तो कितने सेवा केंद्र पे लोग आते हैं, उन्होंने कहा 5 लाख लोग आते हैं। तो दादी ने बताया कि हमारे भाई बता रहे हैं कि एक दिन में हमारे पास 5 लाख रुपए का इकट्ठा हो जाएगा। तो एक महीने में कितना हुआ? 5 × 3 = 15 लाख, 15 ही हुआ ना, 1.5 करोड़ हो गया। साल में 18 करोड़ हो गया, एक साल में 18 करोड़ और 3 साल में 54 करोड़। तो दादी जी ने बताया कि 9 करोड़ हमारा बच जाएगा। और उन्होंने हिसाब लगाया कि जितना आप बता रहे हैं इसमें कम से कम 1 अरब से ज्यादा लगेगा गवर्नमेंट का खर्चा, और ये 10-12 साल से पहले नहीं होगा। फिर गवर्नर ने कहा कि सभी 1 रुपया डालें, क्या गारंटी है? तो दादी ने बड़े प्यार से बोला कुछ लोग 1 नहीं डालेंगे पर कुछ 1 से ज्यादा भी तो डालेंगे। नहीं, ऐसे ही हम सब, हम जब भी डालते हैं, मैंने ये सीखा है अपने जीवन में। मेरी मदर जब भी भगवान पे फल चढ़ाती थी ना तो सुंदर सुंदर छांट के चढ़ाती थी, सुंदर सुंदर। कुछ लोग डिफेक्टेड लेके जाते हैं कि कहीं नहीं चले तो भगवान पे चला दो, तो वो सुंदर सुंदर फल चढ़ाती थी। तो मैं मां को कहता था कि इतने सुंदर फल चढ़ाए तो भगवान ने भी तेरे को इतना सुंदर फल दे दिया। नहीं तो इसलिए जब वो दिया तो हम भगवान को इस हिसाब से कुछ चढ़ाते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, तो उसका बेस्ट क्या हो सकता है ये आप देख लेना। ये मैंने पाया है। ओम शांति।
बहन एक छोटा सा, कुछ लोगों के मन में ये शंका रहेगी कि हम कुछ भी सहयोग कर रहे हैं उससे हमें ज्यादा मिलेगा, इस भाव से नहीं करना है। और हमारे जो बाबा हम कह रहे हैं वो शिव निराकार है, उन्हें आपके और हमारे पैसों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये जो भी है हमारे लिए क्रिएट हो रहा है, इंक्लूडिंग जो भोजन है वो हम ही खा रहे हैं, वो सिर्फ भासना लेते हैं, वो कुछ ले नहीं सकते और हम आपको उनको कुछ दे नहीं सकते, हम उनसे सिर्फ लेते ही हैं। थैंक यू।
थैंक यू संजीव भाई जी एंड राव भाई जी, बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ कि कैसे हमारा ज्ञान सरोवर बहुत ही ब्यूटीफुल परिसर है वो कैसे बना और कितनी खूबसूरती से सभी जो ईश्वरीय फैमिली है उन्होंने सहयोग देकर इतने सुंदर जो भवन है उनका निर्माण कराने में अपना सहयोग दिया। तो मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे जगबीर भाई जी से। भाई साहब, आजकल हम ये शब्द बहुत सुनते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये आजकल युवाओं में ही नहीं बड़ों में भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं जो यहाँ इस विशेष ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो पीस ऑफ माइंड दिया जाता है, मेडिटेशन टेक्निक सिखाई जाती है, तो क्या वाकई में इस तरीके के जो आज केसेस आ रहे हैं, विशेष डिप्रेशन के या सुसाइडियल टेंडेंसीज बढ़ती जा रही हैं, इसमें जरूर मदद मिलेगी यहाँ के द्वारा सिखाई गई मेडिटेशन में?
ओम शांति। जो स्ट्रेस का मेन कारण होता है वो होता है डेली रूटीन। आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे जागते हैं, किस टाइप का खाना खा रहे हैं। जैसे ही हम इस सिस्टम को जान लेते हैं, राजयोग का साइंस को जान लेते हैं, तो सबसे पहले तो उसमें बताते हैं कि जो भी हमारा खान पान है ना, अगर वो शुद्ध नहीं है, हम बहुत तामसिक भोजन खाते हैं, तो उससे भी हमारी कर्मेंद्रियां चंचल हो जाती हैं, जिसके कारण स्ट्रेस होता है। फिर अगर आपने रात को 2-3 घंटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे लगाया, तो आपको नींद नहीं आएगी ठीक। नींद ठीक नहीं आएगी तो आपकी हीलिंग नहीं होगी, आपको भूख नहीं लगेगी, और जो हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए, मेलाटोनिन करके रात को जो हार्मोन रिलीज होता है जिससे नींद आती है, वो डिले हो जाता है उसका प्रोसेस, तो उसके कारण फिर वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखते हैं कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। हमेशा हम सोने से पहले सारी न्यूज देख लेंगे कि कहाँ क्या हुआ, और सुबह उठे फिर से वो न्यूज। तो जब हम इस लाइफस्टाइल में आ जाते हैं तो काफी हद तक मतलब वो कंट्रोल हो जाता है स्ट्रेस के जो रीजंस हैं। फिर हमारे कैसे रिलेशंस हैं, किससे हमारी अटैचमेंट है, कितना हम क्रोध कर रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, बिना क्रोध के भी हम व्यवहार में आ सकते हैं। कई बार हमें ईगो हो जाती है। अब कई बार मैं बताता हूँ, कुछ सीनियर अफसर्स हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं, जब सिविल में आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है सेट होने में। मैंने कहा सर आप ये भूल जाओ कि मैंने कभी सर्विस की थी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उनको ऐसा होता है, बस में जा रहे हैं, पब्लिक में देख रहे हैं, सिविलियंस के साथ बहुत सारी स्ट्रेस हो जाती है इन बातों से, तो हमारे रिलेशंस ठीक हो जाते हैं। और जैसे ही हम मेडिटेशन और ये स्पिरिचुअलिटी समझ लेते हैं, तो हमारी जो ग्रीडी नेचर है, इतना जमा कर लें, तो वो सारी चीजें भी उसका क्योर हो जाते हैं। बहुत सिंपल लिविंग में हमारी जो लाइफस्टाइल है वो मैनेज हो जाती है। उसके पास जो हमारा लेजीनेस है, सुस्त, सुबह उठे, उठना चाहिए जल्दी, 1-2 घंटे लेट उठे, ना एक्सरसाइज हो रही है, ना सुबह के कुछ दिनचर्या के काम हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी हमारे मेंबर्स हैं ये कोर्स करते हैं और धीरे धीरे 1-2 महीने में अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं, तो स्ट्रेस मैनेज करने में उनको बहुत मदद मिलती है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, जैसे ही आप नेगेटिव वेस्ट या इम्प्योर थॉट्स क्रिएट करेंगे, तो हमारे अंदर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो रिलीज हो जाता है, और वो ब्लड के द्वारा पूरे केमिकल्स हैं वो हर सेल्स तक पहुंच जाते हैं। तो धीरे धीरे हमें टेंशन, डिप्रेशन, उस साइकिल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम ये प्रैक्टिस करते हैं जो यहाँ कराई जाती है, आई एम ए सोल, आई एम पावरफुल सोल, तो सोल कॉन्शियस होते ही हमारे अंदर वो हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होते हैं, उनको कहते हैं एंडोर्फिन। तो ये एक बड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन डे बाय डे हमें बहुत यूजफुल हो जाता है जैसे ही हम इस राजयोग की साइंस को समझ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इवन हमारे पर्सनल लाइफ में, जब हमने देखा कि सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा योग करके फिर कुछ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी, फिर 1-2 घंटे कुछ एक्सरसाइज करनी है, तो इतना चेंज करने से ही मतलब काफी सेल्फ डेवलपमेंट हुआ, काफी अचीवमेंट्स हुई, और स्टूडेंट्स हैं उनकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये ओवरऑल एक राजयोगा जो ट्रेनिंग है, ये हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस आर्ट ऑफ लिविंग है। तो इस लिविंग को अगर हम थोड़ा भी अपनाएं, हमें देख करके हमारे बच्चे इसको अपनाएं, तो स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड, जो मैं समझता हूँ। थैंक यू।
थैंक यू भाई साहब। डिप्रेशन, स्ट्रेस आज हम देखते हैं बहुत बढ़ता जा रहा है, उसमें भी मेडिटेशन कैसे जरूर हमें मदद कर सकता है, तो जरूर इस मेडिटेशन को हम अपनी दिनचर्या में अपनाएं, शामिल करें, तो बहुत सी बीमारियां, बहुत से मेंटल जो डिस्टर्बेंसेस कल होती हैं, उससे हम जरूर अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं। तो आज के हमारे सभी गेस्ट का एक बार फिर से जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और एक अनाउंसमेंट है कि अगर किसी को भी हमारे ब्रह्म कुमारी लिटरेचर को खरीदना हो तो इसी हॉल के आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हमारा जो ग्लोबल ऑफिस है वहीं पर आप उस लिटरेचर को ले सकते हैं। और टाइमिंग विशेष दोपहर में जब आपका सेशन खत्म होता है उसके बाद आप लंच ब्रेक के लिए जाते हैं, उससे पहले आप वहां से वो ले सकते हैं। और ऐसे ही इवनिंग में जो आपका सेशन समाप्त होता है उसके बाद आप वहां पर जाकर ले सकते हैं। यहीं इसी परिसर के फर्स्ट फ्लोर पर आप लिटरेचर जो है खरीद सकते हैं। थैंक यू। और अभी हम सभी दो मिनट परमात्मा की याद में यहीं बैठेंगे। ओम शांति।